नमस्कार श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 8:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की तमाम खेल खबरों से। आज के स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और दिन भर की तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ प्रेम प्रकाश। प्रेम, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद सिद्धार्थ।
सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मेजबान मलेशिया को 4-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की, भारत 9 अंक के साथ शीर्ष पर। कर्नाटक ने गोवा में 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप में ओवरऑल खिताब जीता। काठमांडू में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के अंतिम ग्रुप ए मैच में कल भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच पुणे में बृहस्पतिवार से खेला जाएगा। टीम इंडिया मैच में वापसी के लिए पूरी तरह तैयार। भारत ए टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा 31 अक्टूबर से। बीसीसीआई ने टीम की घोषणा की। जम्मू कश्मीर गोल्फ ओपन के चौथे संस्करण का आयोजन 23 से 26 अक्टूबर के बीच जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में, और वुमेन्स इंडियन ओपन गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन गुड़गांव में 24 अक्टूबर से किया जाएगा। और सबसे पहले बात करते हैं हॉकी की, जहां से एक बड़ी खबर अभी भी आ रही है। सुल्तान जोहर कप हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मेजबान मलेशिया को 4-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की, और इस शानदार जीत पर हम यही कहेंगे।
कुछ करिए नस नस मेरी खोले हाय, कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ करिए बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए, ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, डूबे तरिए या मरिए, शक दे
जी हाँ प्रेम, भारत 9 अंक के साथ तालिका में शीर्ष पर है, लगातार तीसरी जीत, क्या कहेंगे?
देखिए, बहुत खूबसूरत जीत है और मेजबान मलेशिया को हराया है। अभी हमारी भारतीय पुरुष टीम की अगर हम बात करें तो ओलंपिक में लगातार, लगभग 2 ओलंपिक में लगातार हम ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे हैं
जी।
और उन्हीं के उसी टीम के हिस्सा रहे सुपरस्टार पीआर सृजेश की जो है वो कोच है इस टीम के, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अनुभव हमारी जूनियर टीम के साथ है, और तीसरी जो इतनी बड़ी जीत हासिल की है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी टीम और भी बेहतर करेगी। और आगे के टाइम के लिए अगर देखें तो 2 ओलंपिक्स का अनुभव है, बहुत सारे कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, इन सबका अनुभव कोच के साथ है, पीआर सर्जेस के साथ है, तो मुझे लगता है कि टीम से बहुत सारी उम्मीदें अभी बाकी है।
और आइए जानते हैं आज के इस मैच पर जाने माने कमेंटेटर कुलविंदर सिंह कंग ने क्या कहा।
अगर भारतीय टीम के आज के मैच की बात करें तो भारत ने मलेशिया से जब शुरुआत की, पहले क्वार्टर में मलेशिया ने शुरुआत के 10 मिनट में लगातार 2 गोल करके सभी दर्शकों को स्तब्ध कर दिया, लेकिन भारतीय टीम ने वापसी की और लगातार 2 गोल दाकर पहले क्वार्टर में 2-2 से बराबरी की। दूसरे क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ, मध्यांतर तक स्कोर 2-2 रहा, काफी पेनल्टी कॉर्नर जरूर मिले लेकिन उन्हें डिफेंड किया गया। तीसरे क्वार्टर में 6वें मिनट में मलेशिया को पेनल्टी कॉर्नर मिला लेकिन स्टॉप नहीं हुई बॉल, और 9वें मिनट में भारत के तरफ से प्रियोवार्ता का गोल फील्ड गोल था, और 9वें मिनट में भारत की तरफ से प्रियोवार्ता ने फील्ड गोल करके भारत को 3-2 से आगे कर दिया, और 10वें मिनट में उप कप्तान रोहित ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील करके भारत को 4-2 से आगे कर दिया। चौथे क्वार्टर में कोई गोल नहीं हुआ और इस तरीके से भारत ने मेजबान मलेशिया को 2 के मुकाबले 4 गोल से पराजित करके लगातार टॉप पर बने रहने का अपना सिलसिला जारी रखा है।
जी हाँ, कुलविंदर ने बताया कि किस तरह से आज के इस पूरे मैच में शुरू में तो मलेशिया लगा कि कुछ हावी हो रही, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम ने कमबैक किया और मैच को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में लिया। और बता दें कि इससे पहले भारत ने अपने पहले मैच में जापान को 4-2 से और इसके बाद अगले मैच में ब्रिटेन को 6-4 से हराया था। भारत 6 अंकों के साथ तालिका में शीर्ष पर है, वहीं मलेशिया अब अपने 3 मैच हार चुका है, और फिलहाल भारत के बाद तालिका में न्यूजीलैंड है जिसने तीन मैच खेले हैं, एक जीता है, दो मैच उसके ड्रॉ हुए हैं, पांच पॉइंट्स हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया है, इसके बाद ब्रिटेन है और फिर जापान है, जिसमें तीन मैच खेले हैं, एक जीता है और फिलहाल उसके तीन अंक हैं। तो ये तो बात थी हॉकी की। काठमांडू में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के अंतिम ग्रुप ए मैच में कल भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। भारत सेमीफाइनल में पहले ही जगह पक्की कर चुका है। बांग्लादेश की टीम अगर इस मुकाबले में जीत दर्ज करती है तो ग्रुप में फिलहाल वो शीर्ष पर रहेगी। आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
सेमीफाइनल में पहले ही अपनी जगह पक्की कर चुका भारत कल काठमांडू में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के अंतिम ग्रुप ए मैच में बांग्लादेश से खेलेगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5:15 बजे से खेला जाएगा। टीम इंडिया की नजरें एक बार फिर अपना दबदबा बरकरार रखने पर टिकी होंगी। भारत अभी 3 अंकों के साथ ग्रुप ए में शीर्ष पर चल रहा है। ग्रुप ए में भारत के साथ बांग्लादेश और पाकिस्तान की टीमें हैं और दोनों के एक एक अंक हैं। बांग्लादेश बेहतर गोल अंतर के कारण पाकिस्तान से ऊपर दूसरे स्थान पर है। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के इसके पहले के मैच ड्रॉ रहे थे। ग्रुप बी में 4 अंक लेकर नेपाल शीर्ष पर है। उसके दो मैचों में एक जीत और एक ड्रॉ मैच रहा। ग्रुप बी में नेपाल के अलावा भूटान, श्रीलंका और मालदीव की टीमें हैं। तालिका में भूटान के भी 4 अंक हैं और वह दूसरे स्थान पर है। श्रीलंका 3 अंक के साथ तीसरे और मालदीव अपने दोनों मैच हारने के बाद 0 अंक के साथ अंतिम स्थान पर है। 17 अक्टूबर से शुरू हुई प्रतियोगिता 30 अक्टूबर तक चलेगी। भारत इस टूर्नामेंट में 5 बार 2010, 2012, 2014, 2016 और 2019 का चैंपियन रह चुका है। बांग्लादेश प्रतियोगिता का वर्तमान चैंपियन है। देखना दिलचस्प होगा कि सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब कौन सी टीम जीतती है। शक्ति सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
जी हाँ प्रेम, जिस तरीके से कल भारत और बांग्लादेश का सामना होने वाला है, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस मैच को?
देखिए, मौजूदा चैंपियन है बांग्लादेश, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिंदुस्तान पहले ही 5 बार ये खिताब जीत चुका है, तो उसके साथ भी एक जो है खास अनुभव भी है और खास अपना कॉन्फिडेंस भी है। लेकिन हाँ, मैचेस जब होते हैं तो हम किसी भी टीम को कमतर करके नहीं चल सकते, और बड़ा टूर्नामेंट है तो हिंदुस्तान जैसे शीर्ष पे है कोशिश करेगी टीम की उसी तरह शीर्ष पे बरकरार रहे।
और अब बात करते हैं क्रिकेट की। भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया दौरा 31 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच होगा। इसके लिए टीम की घोषणा कर दी गई है। टीम का ब्यौरा दे रहे हैं मुकेश कुमार।
राष्ट्रीय पुरुष चयन समिति ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए 15 सदस्यीय भारतीय क्रिकेट टीम का चयन किया है। इसमें ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तान बनाया गया है। बंगाल रणजी ट्रॉफी टीम के सलामी बल्लेबाज अभिमन्यु ईश्वरन उप कप्तान होंगे, जबकि नीतीश कुमार रेड्डी, देवदत्त पड़िक्कल और साई सुदर्शन टीम के अन्य सदस्य होंगे। मुकेश कुमार, खलील अहमद, यश दयाल और नवदीप सैनी इस दौरे पर भारत ए आक्रमण की अगुवाई करेंगे। ईशान किशन और अभिषेक पोरेल 15 सदस्यीय भारतीय ए टीम में 2 विकेटकीपर हैं, जो मैके और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 2 प्रथम श्रेणी मैच खेलेंगे। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जय शाह ने बताया कि भारत ए टीम पर्थ में टीम इंडिया के खिलाफ 3 दिवसीय इंट्रा स्क्वाड मैच में भी हिस्सा लेगी। भारत ए का ऑस्ट्रेलिया दौरा 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मैके में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 4 दिवसीय प्रथम श्रेणी मैच से शुरू होगा। दूसरा मैच 7 से 10 नवंबर तक मेलबर्न में खेला जाएगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
प्रेम, जो इस पूरे दौरे में जो सबसे महत्वपूर्ण अनूठी चीज है कि पर्थ में टीम इंडिया के खिलाफ जो इंटर स्क्वाड सीनियर टीम के साथ मैच होगा, वो भी काफी इंटरेस्टिंग रहने की संभावना है।
बिल्कुल बिल्कुल, और सबसे अच्छी चीज ये है कि अगर टीम ए वहां पे जा रही है तो मुझे लगता है कि आगे के टाइम के हिसाब से भी हम देखें, ये बहुत अच्छी चीज है कि इंटरनेशनल पिचेज पे हमारे वो प्लेयर्स भी खेल रहे हैं जो अभी टीम इंडिया टीम ए में है, तो कल को वो जब टीम नेशनल टीम में आएंगे तो मुझे लगता है कि अनुभव उनको काम आएगा।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच पुणे में बृहस्पतिवार से खेला जाएगा। बेंगलुरु टेस्ट गंवाने के बाद अब टीम इंडिया की नजर पुणे टेस्ट में जोरदार वापसी की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया पूरी तरह तैयार है, बता रही है वैष्णवी।
आज टीम इंडिया के सहायक कोच रायन टेन डेस्कार्टे ने बताया कि ऋषभ पंत और शुभमन गिल फिट हैं और चयन के लिए उपलब्ध रहेंगे। अब ऋषभ पंत भी चोट से उभरने के बाद कीपिंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
Yeah, I think everyone's really well. There wasn't too much bowling in that first test. The fast bowlers were all good. Rishabh's pretty good. I think we were touching it the other day. He was having a little bit of discomfort at the end of his movement with the knee. But fingers crossed he'll be good to keep in the test.
बता दें कि बेंगलुरु टेस्ट के दूसरे दिन पंत एक स्टंपिंग करते वक्त अपना घुटना चोटिल कर बैठे थे. इसके बाद पूरे मैच में ध्रुव जुरेल ने कीपिंग का जिम्मा संभाला था. हालांकि पंत बल्लेबाजी के लिए आए थे और बेहतरीन 99 रनों की पारी खेली थी, लेकिन दूसरी पारी में जुरेल फिर से कीपिंग के लिए आए और पूरी पारी के दौरान कीपिंग की. वहीं गले में जकड़न के कारण गिल भी बेंगलुरु टेस्ट नहीं खेल पाए थे. रायन ने आज प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे लगता है कि सभी लोग वास्तव में ठीक हैं. पहले टेस्ट में बहुत ज्यादा गेंदबाजी नहीं हुई थी, इसलिए सभी गेंदबाज अच्छे हैं. ऋषभ अब ठीक है. दशकाटे ने कहा, ऋषभ अब ठीक है, हालांकि उनके घुटने में थोड़ी तकलीफ थी, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि वे कीपिंग कर पाएंगे. वहीं गिल ने बेंगलुरु में नेट्स किया था, मुझे उम्मीद है कि वह भी टेस्ट के लिए पूरी तरह से फिट होंगे. गिल की वापसी से भारत के लिए चयन की एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है. बेंगलुरु टेस्ट में गिल की जगह लेने वाले सरफराज खान ने अपने मौके का फायदा उठाते हुए शानदार 150 रन बनाए. उनका शानदार प्रदर्शन भारत के मध्यक्रम के फैसलों की जटिलता को बढ़ाता है, खास तौर पर राहुल के मौजूदा फॉर्म को देखते हुए. सहायक कोच ने प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा का संकेत दिया. वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन.
जी हां प्रेम, जिस तरह से टीम इंडिया अब कमबैक करने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे कुछ खिलाड़ी जो चोटिल थे और फिटनेस एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रही थी, अब लोग अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं.
बिल्कुल तैयार है. पहला टेस्ट मैच हम लोग हार चुके हैं और जैसा कि कप्तान रोहित शर्मा ने भी कहा कि हम लोगों से थोड़ी सी गलती हुई है पिच को रीड करने में. तो अगर अभी जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर जो है पुणे में अगर पिच वहां स्पिन का जादू चलता है, तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल हमारे पास अश्विन और जडेजा जैसे विश्व स्तर के स्पिनर्स हैं, जिनके अगर कुछ आंकड़ों की मैं बात करूं तो बहुत ही खास आंकड़े हैं. अश्विन और जडेजा दोनों ने 47 घरेलू टेस्ट मैचों में 494 विकेट चटकाए हैं और इस दौरान भारत में अश्विन का औसत 21.31 है जबकि जडेजा का 24 का है. तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहां ऐसा होता है तो हम बेहतरीन तरीके से कमबैक करेंगे.
बिल्कुल, तो टीम इंडिया पूरी तरह से कमबैक के लिए तैयार है. बात करते हैं गोल्फ की. जम्मू कश्मीर गोल्फ ओपन के चौथे संस्करण का आयोजन 23 से 26 अक्टूबर के बीच जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में हो रहा है. ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं वैष्णवी की ये रिपोर्ट.
भारत में पेशेवर गोल्फ की आधिकारिक स्वीकृति देने वाली संस्था प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया PGTI राज्य पर्यटन के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर ओपन के चौथे संस्करण का आयोजन करेगी. इस प्रतियोगिता का आयोजन 23 से 26 अक्टूबर तक जम्मू के जम्मू तवी गोल्फ कोर्स में किया जाएगा. इस आयोजन की कुल पुरस्कार राशि 50 लाख रूपये है. ये टूर्नामेंट क्षेत्र में गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने की जम्मू और कश्मीर पर्यटन की पहल का हिस्सा है. जम्मू और कश्मीर में कुछ शानदार गोल्फ कोर्स हैं, जिनमें जम्मू तवी गोल्फ कोर्स, रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स, पहलगाम गोल्फ कोर्स और गुलमर्ग गोल्फ क्लब शामिल है. ये कोर्स गोल्फरों को एक शानदार अनुभव प्रदान करते हैं. इस आयोजन में भाग लेने वाले शीर्ष भारतीय पेशेवरों में शौर्य बीनू, वरुण पारिक, ओलंपियन उदयन मानी, सचिन बैसोया, शंकर दास, एम धर्मा और अभिनव लोहान जैसे गोल्फर शामिल हैं.
जी हाँ, गोल्फ तो खेला ही जाएगा, साथ में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा आपको श्रोताओं बता दें कि वुमेन्स इंडियन ओपन गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन गुरुग्राम में 24 अक्टूबर से किया जाएगा. इस टूर्नामेंट में 31 देशों की 114 खिलाड़ी भाग ले रही, इसमें से कई हाल ही में लेडीज यूरोपियन टूर की विजेता भी रही हैं. और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का. कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ. प्रेम, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
धन्यवाद सिद्धार्थ, शुभरात्रि.
इसी के साथ अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ मुझे यानी सिद्धार्थ सिंह को. नमस्कार, शुभरात्रि.